मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 6 अगस्त 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अश्वनी द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से और अनामिका तिवारी आपका गांव है नरौरा अर्जन जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज आप सबसे अगर मैं पूछूं कि आज का मुख्य विषय क्या होगा तो शायद ही आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो बता न सके। आप सोच लीजिए कि आज के किस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। बेहतर होगा कि मैं शीर्षक उसी समय ही बताऊं, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें हम जान लें। ये दो खबरें भी इंपॉर्टेंट हैं। मैं देखिए जब इंपॉर्टेंट की बात कहता हूं अगर मैं नहीं भी आपको बताऊं तो आप मानकर चलिए कि मेरे इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं। राइट। कल दो और महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं। अनुच्छेद 370 के बाद हटाया गया, 35A खत्म किया गया, जम्मू कश्मीर में 10% आरक्षण लागू करने के बारे में विधेयक पारित किया गया। इन पर आपने खूब चर्चाएं सुनी हैं, लेकिन दो और भी महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुई जो सच पूछिए तो इतने बड़ी घटना के सामने एक प्रकार से साइलेंट सी रही, लेकिन आपको जानना चाहिए। मैं थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में दूंगा, विस्तृत जानकारी आपको मैगजीन्स में मिल जाएगी। एक तो यह कि सैरोगेसी नियमन विधेयक 2019 पारित किया गया। यह नियमन विधेयक है, याद रखिए, है ना, पहले से है, उसको रेगुलेट करेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे आप समझ लीजिए, वह है कि जो सैरोगेसी हम किसे कहते हैं। सैरोगेसी का मतलब है कि हम कोई भी मदर अपनी कोख को किराए पर देती है ना, वो दूसरे के बच्चे का बच्चे को अपने कोख में धारण करती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो जिसने किराए पर मदर की कोख ली थी वह उसे वापस बच्चे को कर देती है। भारत में बहुत समय से ये चल रहा है, राइट। लेकिन इस बीच में इसको लेकर के बहुत सी खबरें पढ़ने को मिली और बहुत सी रिपोर्ट्स भी आई। जैसे बकायदे जो मानव भ्रूण है उसकी खरीदी बिक्री होने लगी, यहां तक कि उसका निर्यात तक होने लगा। इस कारण महिलाओं का शोषण होने लगा। कई मामले तो ऐसे भी आए कि कोख किराए पर ले ली गई, बच्चा हुआ और पता लगा कि जिसने किराए पर कोख ली थी उसने बच्चे को लेने से ही इनकार कर दिया। अब आप सोचिए कि उस बच्चे का क्या हो, ये इस मां की स्थिति नहीं है कि वह उस बच्चे का पालन पोषण कर सके। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं बढ़ने लगी थी और इसीलिए फिर सरकार को लगा कि नहीं, इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो इन सबको रोकने के लिए कि इसका दुरुपयोग रुके, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो निसंतान दंपत्ति हैं, यानी कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको कैसे संतान सुख उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि सैरोगेसी का मतलब मूल उद्देश्य तो यही था कि भाई जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो किसी मां की कोख किराए पर लेकर के और बच्चा प्राप्त कर लें, उनका ध्यान रखा गया है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो वो मैं केवल बता करके यहां खत्म करना चाहूंगा, वो ये है कि जो इसमें सैरोगेट मां को जो डिफाइन किया गया है उसके चारों तरफ पूरा का पूरा विधेयक घूमता है। ये केंद्र में है। तो सैरोगेट मां कौन होगी? सैरोगेट मां वह होगी जो बच्चा जो कोख को किराए पर लेना चाह रहे हैं, एक तो उस दंपत्ति के निकट की रिश्तेदार हो, वही लोग ले सकते हैं। दूसरा यह है कि वह जो महिला अपने कोख को किराए पर देना चाह रही है वो विवाहिता हो और साथ ही उनका उनकी अपनी भी कोई न कोई संतान हो, तो यह है सैरोगेसी मदर की डेफिनेशन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना चाहिए। दोस्तों बहुत से ऐसे देश हैं जहां बकायदे जो सैरोगेसी मदर है उसको रोक मतलब उस पर बैन है, आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसमें ब्रिटेन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, यहां सैरोगेसी मदर का प्रोविजन नहीं है। लेकिन थोड़े से देश ऐसे हैं जिसमें रूस है, यूक्रेन है, और यहां तक कि अमेरिका में पूरे में नहीं है लेकिन वहां का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहां ये मान्य है। तो कुछ ही देशों में इसे मान्यता मिली हुई है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है दोस्तों, वो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति ब्रैकेट में अधिकारों की सुरक्षा विधेयक। ट्रांसजेंडर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उभय लिंगी, वैसे बोलचाल की भाषा में किन्नर कहे जाते हैं। आपको ध्यान होगा, अगर आप बहुत समय से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे या अखबारों से जुड़े होंगे, तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे केंद्र को और राज्यों को यह निर्देश दिया था कि जो ट्रांसजेंडर पर्संस हैं, आप उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिस्टम बनाइए, उन्हें अधिकार दीजिए संविधान के तहत। तो फिर बातें चलती रही, कुछ होता रहा, लेकिन अभी 2019 में यह विधेयक पारित हो गया है और इसमें बकायदे उनके लिए संस्थाएं बनाने के प्रोविजन है, उनके लिए कल्याण किए जाने के प्रोविजन है, उन्हें समान अधिकार जो शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक अधिकार हैं उन्हें उनके दिए जाने की व्यवस्था की गई है। और सच पूछे तो यह बहुत ही हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार है उसको उसके पालन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों इस पर भी आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। आज करंट कंटेंट के तहत कुपोषण से जुड़ी विडंबना, उसमें कुछ बहुत नई बातें कही गई हैं, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। हिंदू में यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, उसका हिंदी वर्जन आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ज्यों का त्यों ट्रांसलेशन हम लोग नहीं देते हैं, यह बात आप जानते हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज का क्या है, अनुच्छेद 370 समाप्त। दोस्तों ये वाकई में ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत ऐतिहासिक घटना है, और इसको लेकर कल पूरे के पूरे चैनल्स भरे हुए थे और आज के अखबार भी भरे हुए हैं। ढेर सारी बातें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, उन्हें दोहराने का कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट को यह जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि कल दूरदर्शन न्यूज में जो 8 बजे आता है उसमें कंबाइंड तरीके से हिंदी इंग्लिश को एक में मिला दिया गया है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यह व्यवस्था की गई थी, वो आप जरूर देखें। मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, मुझे कभी यह लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो न्यूज चैनल है जिस तरह से न्यूज प्रेजेंट कर रहा है तो यह सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखकर के ही प्रेजेंट कर रहा हो। इतने खूबसूरत तरीके से टू दी पॉइंट स्टेज बाई स्टेज उसमें सारी चीजें बताई गई हैं, और फिर बकायदे एक्सपर्ट आए हैं और उन एक्सपर्ट से इस इशू के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों बजाय इसके कि मैं उनको उन्हीं बातों को दोहराऊं और आप मुझे सुने और ऊबें, बेहतर होगा कि आप उस न्यूज को एक बार डेफिनेटली सुने और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो नोट कर लें। जो सबसे बड़ी घटना है, देखिए 370 हटा दिया गया है, तो सही मायने में अब जाकर के कश्मीर भारत की मुख्य धारा में शामिल हुआ है, अभिन्न अंग कश्मीर भारत का रहा है, लेकिन मुख्य धारा में इस मायने में नहीं था कि उसकी अपनी संविधान सभा बनी, उसके अपने सब कुछ बहुत से रूल्स रेगुलेशन थे, हमारे संसद द्वारा पारित किए गए कानून वहां लागू नहीं हो सकते थे, ये सब चीजें होती थी तो हमारे मेन स्ट्रीम में तो नहीं था। 35A के बारे में हम लोगों ने पिछले सप्ताह ही बहुत विस्तार से बातें की हैं। अभी कश्मीर में कुछ समय से जो हलचल चल रही थी उसको लेकर के लोगों के मन में था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, और वह बड़ा हो गया। तो दोस्तों सिविल सर्विस की दृष्टि से यहां जो 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं, केवल उनको ही ध्यान में रख करके कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। खासकर जब आप इस तरह के डिस्कशन सुनते हैं, एकेडमिक डिस्कशन, तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाते हैं, या पॉइंट्स तो उसमें इंक्लूडेड होते हैं लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, जो उतने मेच्योर नहीं है, स्वाभाविक तौर पर उसे मिस कर जाते हैं। तो आइए हम 1-2 जो वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर थोड़ा सा विचार करें। दोस्तों जैसे ही आप संविधान को उठाएंगे और ओरिजिनल संविधान में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 370 अनुच्छेद है उसको भाग 21 के तहत रखा गया है, और भाग 21 के नीचे ब्रैकेट में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया है अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इंग्लिश में लिखा गया है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, और इसके तहत फिर 369 से शुरू हो गया है और आगे तक ये चलता रहा है, और इसी में 370 है। इसका मतलब है कि जब संविधान में 370 को शामिल किया गया तो पहले ही बता दिया गया कि ये टेम्परेरी है, ट्रांजिशनल है, या जो संक्रमण काल होता है उसके लिए है, और ये स्पेशल प्रोविजन है, यानी कि यह टेम्परेरी ही था। चलिए आगे जिस वजह से भी होता रहा अखबारों में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और अब इस 370 को हटा दिया गया। जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आतंकवाद, कश्मीर आतंकवाद से जबरदस्त रूप से ग्रसित है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप देखिए कि जब हम लोग भी आतंकवाद के बारे में पढ़ते थे, और आपके जो सिक्योरिटी का चैप्टर है जनरल स्टडीज थर्ड पेपर का मेंस का, उसमें बकायदे नेशनल सिक्योरिटी आपका टॉपिक है और उसमें आतंकवाद भी आता है। मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा, लेकिन मुझे एक पॉइंट नहीं मिला जो कल पता लगा, और वो ये कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक यदि कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है, यानी कि वो कश्मीर में रहने लायक हो जाता है। बट इसके कि हमारे कश्मीर में कितने समय से कश्मीरी रह रहे हैं दूसरी लग जगह से आकर, यहां तक कि भारत का नागरिक जाकर के कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान का नागरिक बन सकता है। ये क्या आपको नहीं लगता कि वहां जो आतंकवादी गतिविधियां जो इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, उनको जो सपोर्ट मिल रहा है, उसके पीछे एक कारण हो सकता है? क्या आतंकवाद फैलाने वाले लोग एक षड्यंत्र के तहत ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते कि भैया चलो जाओ वहां कश्मीरी लड़कियों से शादी करो, वहां की नागरिकता मिल जाएगी, तो बड़े आराम से वहां रहने लगो और हमें शरण दो? ये नया पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा यह कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो आप देखिए फंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन आतंकवादियों के पास इतना पैसा आता कहां से है। उसके लिए एक पॉइंट है, देखिए कि जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका काम क्या है कि भाई जो सरकारी पैसा खर्च हो रहा है उसको ध्यान से देखे कि जिस उद्देश्य से पैसा लगाया गया था, लिया गया था, वह सही उद्देश्य में लगा कि नहीं, सही उसकी प्रक्रियाएं की रही कि नहीं, इसकी जांच करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में वह ऐसा नहीं कर सकता था, तो अब सरकार पैसा भेज रही है। एक आंकड़ा भी दूरदर्शन पर दिखाया गया कि इतने दिनों में 2.77 लाख करोड़ रुपए कश्मीर को दिए गए हैं। सोचिए अब तक 2.77 लाख करोड़ रुपए, और वहां प्रति व्यक्ति भी जो खर्च किया गया है हमारे राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन कश्मीर का विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं विकास हुआ? तो सीधी सी बात है कि ये पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है। अब वो चाहे जिसके भी पॉकेट में जा रहा हो, जिन लोग जो लोग भी कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों तक वह सिमट कर रह गया, और ये माना जा रहा है कि ये पैसा आतंकवादियों तक भी पहुंचा है क्योंकि उनके हित आतंकवादियों के हित से जुड़े हुए थे। तो 370 के लागू होने से एक तो अब जो पाकिस्तानी कश्मीर की लड़की से शादी करके नागरिक बन सकते थे वो प्रतिबंधित हो जाएगा, और फंड पर भी, इस तरह के फंड के दुरुपयोग पर भी रोक लगने से डेफिनेटली आतंकवादी गतिविधियों पर कहीं ना कहीं रोक थाम लगेगी ही। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर के काफी सवाल भी उठ रहे हैं, और वो ये है कि जिस तरह से 370 को हटाया गया है, क्या वह संविधान सम्मत है? सिविल सर्विस की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, राइट? डेफिनेटली जैसा कि लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। अब इसमें जो खंड 3 में जो प्रोविजन किया गया है, अब आप देखिए कि उसमें बहुत क्लियर तरीके से यह बात लिखी गई है, 370 की धारा जो 3 है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वह जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को किसी भी समय समाप्त कर सके। और अनुच्छेद 303 ब्रैकेट 3 में यह भी कहा गया कि इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए यह घोषित कर सकते हैं कि इस अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति के आदेश के तहत उसे समाप्त कर दिया गया। वर्तमान सरकार ने इसी का सहारा लिया। कुछ संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नहीं, वहां के जो विधानसभा से भी इसकी परमिशन ली जानी चाहिए ताकि यह पता लगे कि भाई वहां के नागरिक भी इसके समर्थन में हैं, क्योंकि केवल 370 को समाप्त नहीं किया गया। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, हालांकि वहां विधानसभा भी बनी रहेगी जैसे कि दिल्ली में है, और लद्दाख को बकायदे ही एक यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया है, यानी कि राज्य का पुनर्गठन भी कर दिया गया है। तो इसके लिए कहा जाता है कि यदि राज्य की भी अनुमति ले ली जाती, सहमति ले ली जाती तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, व्यावहारिक स्तर पर या संवैधानिक स्तर पर तो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर क्या होता? क्या सच में राज्य की विधानसभा से यह अनुमति मिल जाता, पहली बात? दूसरी बात कहा जा रहा है कि अभी गवर्नर से ले लिया गया है, तो संविधान की दृष्टि से तो ठीक है, वहां भी विधानसभा नहीं है, गवर्नर है, गवर्नर ने सहमति दे दी, यानी कि राज्य की तरफ से गवर्नर ने हां कह दिया। तो यह सब अलग अलग तरह के प्ली हैं। एक तर्क यह भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि आपने बार बार डिस्कशन में सुना कि अभी तक कश्मीर बहुत पीछे रहा, उसका विकास नहीं हो पाया, वहां फंड का दुरुपयोग हुआ। इसके लिए एक तर्क दिया जाता है कि नहीं नहीं फंड के दुरुपयोग के कारण वो क्षेत्र विकसित नहीं रह गया, बल्कि वहां तो चूंकि आतंकवादी गतिविधियां ही लगातार चल रही थी, राज्य में शांति ही नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं था, तो उसका विकास कैसे हो सकता है। दोस्तों इसके बारे में फिर से आप एक प्रश्न उठा सकते हैं कि अब ठीक है आतंकवादी गतिविधियों के कारण राज्य का विकास नहीं हुआ, अब हम देखते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां हैं क्यों, उसको कैसे रोका जाए, उसके क्या कारण है। तो उस पर जब आप कारण में जाएंगे तो पता लगा वो पाकिस्तानी नागरिक और उसका एक विशेष दर्जा दिया जाना, ये सब मायने रखता है, क्योंकि अभी तक जो कश्मीरी थे सही मायने में अपने को भारत का अंग तो समझते थे लेकिन मुख्य धारा में नहीं समझते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमें तो विशेष दर्जा मिला है। इसीलिए डिस्कशन में एक बात यह भी कही गई कि अब लोगों की सोच बदलेगी, लोग अब अपने को मुख्य धारा का मानेंगे तो उनकी जब सोच बदलेगी तो स्थितियां भी बदलेंगी। तो डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं मित्रों, मैं फिर से लास्ट में सजेस्ट करूंगा कि प्लीज कोशिश कीजिए कि आप दूरदर्शन के उस डिस्कशन को एक बार जरूर सुने, उससे चीजें बहुत ही क्लियर आपके दिमाग में हो जाएंगी। उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आज आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, इसमें आप अपनी जरूरत की बातें नोट कर लेंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल पर, सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, शिवानी सिंह, रवि कुमार दयालपुर बिहार से, ओम प्रकाश कुमावत जयपुर से, शुभम शर्मा गोंडा उत्तर प्रदेश से, शिवराज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, कृणाल बांसकाठा गुजरात से, प्रतीक सिंह थाने महाराष्ट्र से, अखिलेश्वर राज, अनादि वर्मा, श्वेता राज और अनिल कुमार मेरठ उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।